Hello everyone, welcome back to another episode of Sow and Reap, the Urban Gardening Podcast. I hope आप लोगों की दिवाली अच्छी रही. इस दिवाली मैंने काफ़ी लोगों को बाहर निकलते हुए देखा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हुए देखा, तो I hope आप भी ये कर पाए और आपको उसके बाद मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोगों से मिल रहे हैं. हमने भी एक दिवाली का ब्रेक लिया क्योंकि हमें पता था कि आप उस समय घर पे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और आप हमारा एपिसोड नहीं सुनेंगे, तो हमने सोचा कि हम अगले हफ्ते वापस आएंगे कुछ नई चीजों के साथ. वेलकम टू सो एंड रीप द अर्बन गार्डनिंग पॉडकास्ट. दिस इज इंडियाज फर्स्ट गार्डनिंग पॉडकास्ट. वी आर थ्री एमेचर्स हु आर क्रेजी अबाउट गार्डनिंग बियॉन्ड आवर डे जॉब्स.
आई एम चंदना, कोड नेम एडिनियम.
आई एम आशीष, कोड नेम सिंगोनियम.
आई एम पल्लवी, कोड नेम Carnation.
So let's see what we've got planned for you today. In today's Know Your Plant, Chandana is going to talk about how to grow and maintain a beautiful rose plant. Frankly speaking, मुझे रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. I've always found it to be a really fussy plant. सुंदर तो लगता है but बहुत ज़्यादा मेहनत लेता है. But I'm looking forward to what Chandana has to tell us and if she can make it easy enough for us amateur gardeners to grow roses. इन द जानकारी सेक्शन आई एम गोइंग टू टॉक टू डॉक्टर सरिता आनंद. आपको याद होगा कि लास्ट सीजन हमने उनसे काफ़ी लंबी बात करी थी अबाउट हर टेरेस गार्डन. सो वी गॉट अ सेक्शन फ्रॉम दैट इंटरव्यू वेयर शी टॉक्स अबाउट रीयूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल टू ग्रो हर प्लांट्स. एंड आई थिंक यू विल फाइंड दिस सेक्शन वेरी हेल्पफुल बिकॉज यू विल बी एबल टू एक्चुअली यूज थिंग्स दैट यू फाइंड अराउंड द हाउस एंड ग्रो प्लांट्स इन इट विद ईज. Ashish is going to talk about saving your plants from frost and general care for winter. ये काफ़ी common गड़बड़ जाला है. हम सोचते हैं कि हमारे पौधे बाहर सर्दी में खुश रहेंगे. आशीष आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि कैसे आप अपने पौधों का सर्दी में ख्याल रख सकते हैं और आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज ऑफ द एपिसोड बाई टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर तुलसी प्लांट. एज वी नो, तुलसी डजंट डू टू वेल इन विंटर. But most households consider tulsi a sacred plant, so they don't want to see it die. So I'll give you some tips on how to take care of tulsi through the winter. And I just realized that I forgot to introduce myself. I'm Pallavi, and let's get started with today's episode.
Rose, the queen of flowers. It is very popular among ground gardeners. But now, it is slowly gaining popularity in container gardening too, because there are new varieties that are coming together. I have always associated rose bloom with the winter sunshine in November and then the departure of winters in February-March when the beautiful Mughal gardens open their doors to the Janta for the rose darshan. So this time, we thought we will cover rose in our section KYP or Know Your Plants with me, Chandana. Now we do realize that winters are almost here, so it may not be the best time to graft roses in northern India, but you may want to bring home potted roses from the nursery to add great fragrance and colors to your balcony. You can get small plants and then by taking care of them and using the tips and tricks we share with you in KYP, you can make them bushy and get a lot of flowers. The soil mix that you will need for rose is a loamy soil because rose likes loamy soil, which has slight water retention tendency, but rose hates to be waterlogged and it immediately indicates the same with yellowing leaves. तो अगर आपके पास क्लेई सॉइल भी है, आप उसमें थोड़ा सा सैंड मिलाकर और रिच ऑर्गेनिक मैटर मिलाकर एक वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कर सकते हैं. अच्छा, रोज ऑल्सो नीड्स डेप्थ बिकॉज इट इज अ वुडी पेरेनियल, सो यू विल नीड एटलीस्ट 40 टू 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, विच मीन्स यू आर लुकिंग एट अ 12 टू 16 इंच पॉट इफ यू आर प्लानिंग टू ग्रो रोज. It is also helpful if you repot them every year after removing old and dead roots because that helps it bloom better, and you can also change the plants every 3 to 4 years. So that's the life you will get from the plant. You can use old plants to graft. Of course, that way your plant will live on. अब अगर हम बात करें लोकेशन की, रोज लव्स द सन, सो अ साउथ फेसिंग बालकनी इज द आइडियल प्लेस टू लोकेट योर रोज प्लांट्स. Now, when we grow them in a container, it is useful because you can move the plant as sun shifts in your balcony. But it definitely needs at least 6 hours of direct sunlight for it to have the right blooms. Now, if you have decided which plant you want to pick up, you can pick up a small rose plant from an online or local nursery around you. And you can... plant it now, but you have to ensure that there is time for the roots to adjust to the new environment. How do you do that? Once you've picked the rose plant, you line the base of the pot, 12 to 16 inches pot, with gravel, approximately 2 inches high. This is very important because, as I said, rose is a woody perennial. The roots really like to spread out and the gravel helps them find that hole. Keep the draining holes clear so that water can drain easily because rose does not like water. Add your compost or potting soil, fill 1/3 of the pot. Now place your rose plant and cover with compost. Please be careful. Usually we tell you to cover a plant when you put in a pot with soil mix, but here we are specifically asking you to cover it with compost. Cover up to 1 inch above the root system so that all the roots are below the soil, and then you put soil on top of it. Give the rose plant plenty of water and allow it to soak the sunshine over the next few days. It is very essential that when you have potted a rose plant, you keep it wet and you also provide a lot of sunshine to it. Now, once the rose has settled, it will take a month for you to know if your plant has settled well. Do remember that roses are very fond of water and hence would need 1 to 2 inches every week. Now, as I said, rose is a heavy feeder crop. It requires regular free feeding of nitrogen, phosphorus and potassium, and in large quantities. So, you can provide this by mixing in new compost and also using an organic rose fertilizer. Specifically for rose, we recommend that an additive is needed beyond your vermicompost or gobar khad or any kitchen compost that you are using. Because it is such a heavy feeder, you will need to provide this nutrition almost every month. How do you care for a rose plant? For heavy growth, healthy growth, pruning is one of the most important operations because it gives you the right quantity of flowers and also the right size of the flowers. You need to prune when the plant is reaching its dormant to near dormant stage, which is around October to November. You can also prune just before winters is finishing, so mid-January, because in February and March, then your plant will give you the second set of bloom. Manual weeding and mulching also works wonders for rose. So if you can mulch it with dry plant leaves or paddy straws, then it avoids weeding. And it also gives the right nutrition to the plant. Rose also loves pinching. So if you remember our episode on Tulsi, we had talked about pinching, which is basically taking the small stem between your fingers and just pinching it away. Similarly for rose, pinching is very important if you want to have a full foliage. And after one full bloom or flush, as it is called, you can do minor pinching so that new flowers come up quickly and then fill up your bush.
क्या आपके घर में खूब सारे पुराने बर्तन, प्लास्टिक के टेकअवे डब्बे और कांच की बोतलें रखी हुई हैं, जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें? In this segment, in our conversation with Dr. Sarita Anand, she will tell you how she uses all these containers to grow plants.
आप कैसे decide करते हो कि कौन सा plant कौन से material में उगा सकते हो? Like, what would you grow in a metal container? What would you grow in thermocol? Or do you do whatever you want?
See, metal does get heated up quite soon. ठीक है. सो बट व्हेन आई यूज अ मेटल कंटेनर आई कैन ग्रो ऑलमोस्ट एनीथिंग इन अ मेटल कंटेनर एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग इन अ थर्मोकोल कंटेनर.
Yeah.
The only thing is to keep in mind the because of the material being used, what I do is when I plant my plants, I put in a lot of broken vases, you know, these ceramic, these mitti ke gamle jo hote hain, and into ke tukde, right? I've got lots of those. So I put in a thick layer of those, okay? And that helps to, you know, drain the water. And then the kind of soil that I use, I am careful about the soil that I use. It should be well-draining soil. So I use a mixture of 50% soil and about 25% of compost. That is a homemade compost that I make. And 25% of sand.
Okay.
So the sand helps to drain away all the excess water, but keeps the roots cool. And the water that settles inside those, you know, those pieces of bricks, that also helps to keep the roots cool, but it doesn't allow them to decay. So it just allows the root to be at a normal and a healthy temperature. And then you notice around the metal container, I've kept these gamlas. And I've also raised the metal container on bricks.
Okay.
So it will not get heated up. You know, this will prevent it from getting heated up from the heat of the terrace by itself, the cemented terrace. So it maintains air circulation beneath the container. And on the sides of the container also, the air circulation is maintained. But because the mitti gamlas are cool by themselves and they absorb heat. So it you know, the heat from the metal container gets taken away by the other containers. So that way I keep the metal container cool.
Okay.
And for the thermocol container, inside normally I put a lining. You cannot see it here, but I use a lining of garden net. The thermocol away from the soil, direct, you know, be a direct contact, right? So that's the way.
Because I was going to ask you that ki thermocol mein, if you're growing something which you're consuming, then how do you separate the soil from the thermocol?
No, the inner surfaces are all lined by garden net. All the plastic containers, the metal containers, everything, we use a coating of garden net.
दिवाली गई और अगले दिन से ही थोड़ी थोड़ी ठंडक चालू हो गई है. पंखे और एसी बंद हो गए और हमारे गर्म कपड़े और ब्लैंकेट्स भी निकलने चालू हो गए हैं. ओह वेट, यू थिंक हमारे प्लांट्स को भी सर्दी लगती है एंड दे नीड लिटिल एक्स्ट्रा केयर टू? यस दे डू. एज विंटर अप्रोचेस, ह्यूमंस गो इनटू पावर सेविंग मोड एंड डू ऑल दैट इट टेक्स टू मेक द कोल्ड सीजन एज कोजी एज पॉसिबल. Considering that plants can't do so by themselves, we need to take care of them during these few months. तो आज की इस गड़बड़ झाला पाठशाला में मैं आशीष बात करूंगा कैसे हम अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन. फॉर सम प्लांट्स विंटर्स आर अ टाइम व्हेन दे गो इनटू हाइबरनेशन. दैट मींस दे कैन स्लो डाउन देयर ग्रोथ और इवन गो कंप्लीटली डॉर्मेंट. द सीवियरली कोल्ड टेम्परेचर्स can sometimes send them into shock. So we need to give them some extra love and care during these possibly distressing months. Here's a look at some things that could cause harm to your plants and what you can do to prevent it. Sardiyon mein din chote hote jate hain, which means suraj ki roshni limited ho jati hai. To sabse pehle hamare jitne bhi potted plants hain, unhein aisi jagah transfer karna chahiye जहां उनको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके. अगर आपकी बालकनी में कम सनलाइट आती है तो जब भी आप पौधों में पानी दें हर बार उनको थोड़ा घुमा दें जिससे पूरे पौधे को सूरज की रोशनी मिलती रहे. मेक श्योर द प्लांट्स फॉलिएज डजंट हैव ड्यू ऑन इट. अगर है तो कपड़े से साफ कर दीजिए. मेनी प्लांट्स आर सेंसिटिव एंड वाटर डिपॉजिट्स ऑन द प्लांट कैन किल देम. छोटे पॉटेड प्लांट्स को आप इंडोर भी शिफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टू अ विंडो जहां उन्हें सन एक्सपोजर अच्छा मिलता रहे और बाहर की ठंडी हवा से वो बचे रहें. ऑल्सो इंश्योर यू कैन क्लीन योर प्लांट्स एंड वाइप द डस्ट ऑफ द लीव्स. जब धूल पत्तियों पर जमा हो जाती है तो इट प्रिवेंट्स प्लांट्स रिसीविंग द प्रॉपर सनलाइट. अब बात करते हैं पानी की. दिसंबर जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी में अगर कोई पानी के कुछ छींटे ही हम पर मार दे तो ओह, मैं तो सोचकर ही कांपने लग गया। और अगर कोई बोल दे आज सर्दी बहुत है और नहाना कैंसिल, तो जान में जान आ जाती है। या हम गर्म पानी यूज करते हैं नहाने के लिए, हम पानी पीना भी कम कर देते हैं क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इन द सिमिलर वे प्लांट्स ऑल्सो गो इन टू शॉक विद एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर एंड विल हार्म द रूट्स। A good habit would be to fill up a bucket of water in the morning when you wake up, let it sit and reach at least room temperature, and then you can water all your plants. Plants are the most susceptible to root rot during winters. Because of the minimum sun exposure, the evaporation rate also drops down a lot. Isse pots ki mitti jyada time tak gili rehti hai aur root rotting ke chances badh jate hain. हो सकता है ऊपर की लेयर आपको सूखी दिखे, बट अंदर से मिट्टी गीली हो सकती है। इसलिए जब तक 2 इंच डीप में मिट्टी गीली है, पौधों को पानी ना दें। यू शुड ऑल्सो टेक केयर व्हेन यू वाटर द प्लांट्स। वाटरिंग इन द इवनिंग एंड नाइट मे बी डेट्रीमेंटल टू प्लांट बिकॉज द टेम्परेचर ड्रॉप सीवियरली एट नाइट एंड द वॉटर दैट द सॉइल होल्ड्स विल ऑल्सो गेट वेरी वेरी कोल्ड, विच विल इन टर्न harm the sensitive roots of the plant. The best time would be in the late morning when the sun is just beginning to warm the soil. Lastly, during the winter season, the plants grow slowly. So, it would be good if you cut down on the use of fertilizer at this time. Wait till summers for that.
What an episode! I hope you learned something about growing roses and taking care of your plants during the winter. I'm definitely going to try and look after my roses a little better with the tips that Chandana has given. And right after this, I'm going to do a recce of my winter garden to see which plants need a little help to survive the winter. Alright, so as I promised you, I'm going to talk about Tulsi and how to take care of that during the winters. So, aap jante hain ki Diwali se Bharat mein thand shuru ho jati hai. आपके गर्म कपड़े बाहर आ गए होंगे और आप अपने आप को ठंड से बचाने में लगे होंगे। सो इस मौसम में आपकी तुलसी को भी थोड़ी मदद चाहिए। तुलसी इज अ समर प्लांट एंड इट लाइक्स हीट। सो ड्यूरिंग द विंटर इट कैन ड्राई आउट एंड बिकम ब्राउन, बट इट कैन सर्वाइव थ्रू द विंटर विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। व्हेन वाटरिंग तुलसी इन विंटर, अवॉइड यूजिंग कोल्ड वाटर। आपके नल में अभी पानी बहुत ही ठंडा है, तो आप उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं। इतना गर्म भी नहीं मिलाइएगा कि वो खोलता हो जाए, बट ऐसा है कि आप उसमें अपनी उंगली डाल सकते हैं और आपको ना ठंड लगे ना गर्मी। या फिर अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप बहुत ही लकी हैं, अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप उस पानी को थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। यू कैन ऑल्सो पोर वार्म मिल्क इन द वाटर एंड यूज़ दैट, दैट्स टोटली अप टू यू। पोरिंग वार्म मिल्क एक्चुअली कीप्स द मॉइस्चर इन द तुलसी एंड द प्लांट विल ऑलवेज रिमेन ग्रीन विद दैट। I have not tested this out, but you are welcome to do that and see whether it works for you. In winter, tulsi starts drying up and the manjari, which are the seeds, start appearing on it. So the first thing you can do is you can remove the dead leaves and the manjari so that the plant is only focusing its energy on staying green. आप दूसरी चीज जो कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार आप तुलसी के गमले में गुड़ाई करिए। Loosening the soil will help the nutrition and air to reach the roots of the tulsi. So again, your plant will stay green when you give it this kind of care. Also, some of you may know that 15 November is Tulsi Vivah. Traditionally, this is the day that signifies the start of the Hindu wedding season. And as a part of the ceremony of Tulsi Vivah, you cover the tulsi with a red cloth. Whether or not you believe the religious aspect of it, there's actually a reasoning behind covering the tulsi plant. As the tulsi goes into hibernation, it needs to be protected from the cold. So you can drape your tulsi with any thick cloth, color doesn't matter, and you can keep it in a sheltered spot for the winter. Or you can even bring it inside the house where you get some sunlight, but you're protecting it from the cold winds. These simple things will help your tulsi plant to stay green during the winter. And once spring comes and the weather becomes a little bit warmer, you can move your tulsi outdoors again or remove the cloth and let it continue its growing journey. That brings us to the end of this episode. If you want to listen to our episodes regularly, then please subscribe to it on Google Podcasts, Spotify, Apple, Gaana or JioSaavn. You can just search for Sow and Reap, the Urban Gardening Podcast. You can also follow us on Facebook or Instagram to get regular updates. And if you want to share a voice message or a picture with us, do send us a DM on Instagram. All right then, we'll see you with the last episode of this season in 2 weeks. Happy gardening till then.